صل على الرسول. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي. سوالات چونکہ کافی جمع ہو گئے ہوئے ہیں تو بجائے گفتگو کرنے کے ان کے جواب دے کے انہیں کلیئر کرنا چاہیے. کچھ اولیاء اللہ ابتدا میں اپنے پاس آنے والوں کو دوستی اور قدر بے تکلفی کا احساس دلاتے ہیں، پھر جوں جوں ان زائرین کو راہ تصوف و مقام مرشد کی سمجھ آنے لگتی ہے وہ عقیدت کے شیرے میں ڈوبنے لگتے ہیں. مرشد کی عظمت اور اپنی کمائیگی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے تو بے تکلف گفتگو کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے. ادب زیادہ بات کرنے سے روکتا ہے، لیکن کبھی کبھار شاگرد بے تکلفی دوستی اگر وہ دور مرشد صاحب سے شیئر کرتا تھا مس کرتا ہے، جب وہ خواب خیال حضوری میں ہر حال میں اپنی بات مرشد صاحب سے شیئر کرتا تھا اور کنیکٹڈ رہتا تھا. خاموشی حجاب کیوں معلوم ہوتی ہے اکثر. اس میں بلکہ دو ریزنز ہیں. اگر انسان آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک ڈسٹینس قائم رہے تو سیکھ نہیں پاتا، اور اس ڈسٹینس کی وجہ سے اکتاہٹ جلدی آ جائے گی. یہ بالکل ایسا ہے کہ جو بہت اچھے اسکول ہیں، جو واقعی اسکول ہیں اور وہاں ٹیچرز وہ ہیں جو بچوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں، وہاں جب بچہ داخل ہوتا ہے اسکول میں تو پہلے دن ہی سے اس کو پڑھایا نہیں جاتا، بلکہ ٹیچر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی ہیں. تو 10-15 دن میں جب بچے اس ٹیچر کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں تو انڈائریکٹ ٹیچنگ کا سلسلہ وہ شروع کرتی ہے. اور آہستہ آہستہ پھر تعلیم کا سلسلہ ڈائریکٹ جاری ہو جاتا ہے. تو یوں بچے بڑی کامیابی کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اولیاء اللہ میں جو علم کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور جن کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ علم کو پھیلائیں، ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ علم سے یہ مراد مت لے لیجئے گا کہ وہ یہ علم پھیلائیں کہ صاحب کشف کیسے ہوا جاتا ہے، صاحب کرامات کیسے بنا جاتا ہے، مستجاب الدعوات کیسے بنا جاتا ہے. یہ تو علم نہیں ہے. علم اس طرح کا ڈسپینس کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے یہاں کہ دین کے بارے میں اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. دین جو ہے وہ اس طرح سے اس کو سمجھ آ جائے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں उसका मकसद क्या है और इसके क्या क्या असरात मुझ पर मरतब हो सकते हैं या होने चाहिए, तो वो नजर रखेगा कि नमाज पढ़ने से मुझे वो चीजें हासिल हो रही हैं जैसे रब ने नमाज के बारे में एक फैसला कर दिया कि नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। तो अगर उसे इल्म हासिल हो रहा है तो वो इस बात पर नजर नहीं रखेगा कि नमाज पढ़ने से लोग मुझे नमाजी के तौर पर पहचानते हैं या नहीं, मुझे पाबंद नमाजी समझ के सलाम करते हैं या नहीं। वो इस बात पर नजर रखेगा कि जिन चीजों को रब ताला ने बुराई करार दिया है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो उन चीजों से रुक गया या नहीं रुका। तो अगर तो नहीं रुका तो फिर वो अपने एहतसाब खुद कर लेगा। इसी तरह रब ने यह कहा कि रोजे से तकवा हासिल होता है, तो अगर रोजा रख के मैं मुत्तकी नहीं हुआ तो मैं एकदम से चुकन्ना होऊंगा कि मुझसे कहां गलती हो रही है, कि जब मेरे रब ने यह फरमाया है कि रोजा रखने से तकवा मिलता है तो मैं मुत्तकी क्यों नहीं हो रहा, कहां फॉल्ट है मेरे रोजे में, मेरे रवैये में कहां फॉल्ट है, तो मैं उसको दुरुस्त कर लूं ताकि मैं मुत्तकी हो जाऊं। तो नजर फिर इंसान की इन बातों पर रहने लगती है। इल्म किसी भी वली अल्लाह के नजदीक सही इल्म वो है जो इंसान को दीन के बारे में सही समझ अता फरमा दे। तो मुर्शिद के पास जब आप जाते हैं, मुर्शिद आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, इल्म देंगे, तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप टेंस न हो वहां, बल्कि कंफर्टेबल फील करें, रिलैक्स्ड फील करें। तो कंफर्टेबल फील कराने के लिए और आपको रिलैक्स्ड फील कराने के लिए आपके मुर्शिद आपसे दोस्ती का इजहार करते हैं, बेतकल्फी का इजहार करते हैं। जहां आपके मुर्शिद आपको देखेंगे कि आप बड़े टेंस बैठे हैं तो वो बड़ी कोई लाइट बात आपको कह के आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे और उस हंसी के साथ ही आपकी टेंशन जाती रहेगी। तो यूं आप ज्यादा रिसेप्टिव होंगे उन बातों के लिए जो आपके मुर्शिद आपके साथ कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब आप बहुत रिसेप्टिव हो गए और आपके मुर्शिद आपको इल्म डिस्पेंस कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता अपने मुर्शिद साहब की बातों को झूंझू आप गौर करेंगे, उनके इल्म की बड़ाई आप पर जाहिर होने लगेगी, तो आपके दिल में एक एहतराम आएगा कि मेरे मुर्शिद कितने बड़े साहिब इल्म हैं। आप उनसे मिलेंगे, उनको करीब से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि बारीक से बारीक बात भी, जो छोटी से छोटी बात है, उसमें भी वो सुन्नत की पैरवी करते हैं। उनके तकवे और नेकी की वजह से उनका आपके दिल में एहतराम पैदा होगा। तो ये दोनों चीजों का जो एहतराम आपके दिल में पैदा होगा उसकी वजह से आपके दिल में उनका एहतराम आता है। तो जहां एहतराम होता है वहां खामोशी हो जाती है, तो वो अमल अज खुद पैदा होता है। और जहां तक उस अर्ली स्टेज को मिस करने की बात है, हम सभी कभी कभार जब फुर्सत होती है बैठते हैं तो हम मिस करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ को। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा एफ्लुएंट नहीं होती किसी लिहाज से भी, ना हम आजाद होते हैं घूमने फिरने में, ना हम आजाद होते हैं अपनी मर्जी के लोगों के साथ गुफ्तगू करने में, ना फाइनेंशियली हम इतने ज्यादा एफ्लुएंट होते हैं कि हमारी माली इस्तेदाद महदूद होती है उस जेब खर्च तक जो माँ बाप हमें दे दें, लेकिन उसके बावजूद हम उसे मिस करने लगते हैं कभी कभार। तो ये इंसानी फितरत में है कि गुजरी हुई चीजों को इंसान मिस करता है। लेकिन कोशिश के बावजूद आप मुर्शिद से फिर बेतकल्लफ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दरमियान में अदब आ जाएगा। तो ये सारी उसकी वजह है और कोई वजह नहीं। इनका अगला सवाल यह है कि क्या तकाजाए अदब की वजह से किसी मजार पर हाजिरी के वक्त हमेशा अपनी निस्बत यानी अपने मुर्शिद साहब की जानिब से पहले सलाम अर्ज करना चाहिए फिर अपनी तरफ से? बात यह है कि जब तक हम अपने आप को छोटा समझते हैं तो हम जहां किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं जो हमें पहचानते नहीं, तो हम जाके अपना तारुफ कराते हैं कि हम फलां के बेटे हैं, ये मेरा नाम है और मैं फलां का बेटा हूं। उसके बाद अपना मुद्दा बयान करते हैं। तो ये जो रूहानियत का सिलसिला है, इसमें भी चूंकि मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है, हां मेरे मुर्शिद एक मकाम पर फाइज हैं, बहुत बड़े मकाम पर, तो मैं अगर किसी मजार पे जाता हूं और वहां सुन्नत के ऐन मुताबिक जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है मैं सलाम करता हूं और सलाम करने के बाद मैं अपना तारुफ कराता हूं कि साहब मेरा नाम ये है और मैं फलां साहब के हाथ पर बैत हूं और अज़राहे अखलाक जैसे हम रिश्तेदार के पास जाते हैं उनसे तारुफ कराते हैं कि जी मेरा नाम ये है मैं फलां का बेटा हूं और अगली बात ये कहते हैं खा हमारे माँ बाप ने सलाम ना भी करवाया हो तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने आपको सलाम भिजवाया है। तो इसी तरह हम जब वहां जाते हैं तो हम अर्ज करते हैं कि जी मेरे मुर्शिद फलां हैं और उन्होंने मुझे आपकी तरफ रवाना किया है और उन्होंने आपको सलाम कहलवाया है, उनका सलाम कबूल फरमाइए। ये तारुफ का एक तरीका है, जरूरी नहीं है लेकिन ये एक तरीका है और ऐसा तरीका जो पसंदीदा है। एक रीजन ये है, एक इसके पीछे और एक छोटी सी छुपी हुई हकीकत है। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं यहां से जाता हूं बाबा साहब की खिदमत में हाजिरी के लिए सलाम अर्ज करने पाकपतन शरीफ। बाबा साहब बहुत बुलंद मकाम पर हैं और वो शागिर्दी की राहों से भी गुजरे हैं, کہ جناب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت پہ حاضری دیتے رہے, وہیں سے انہیں فیض ملا, وہیں سے علم حاصل ہوا. اب وہ انہی راہوں سے گزرے ہیں کہ انہوں نے مرشد کو انتہائی بلند مقام عطا کیا. اپنی زندگی میں ان کا مقام بہت بلند رکھا. ہر انسان وہ چیزیں پسند کرتا ہے جو وہ خود کرتا رہا ہو. تو جب میں وہاں جاتا ہوں اور میں ریفرنس دیتا ہوں اپنے مرشد صاحب کا, انہیں یہ خوشی ہوگی کہ یہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے مرشد کو ایک بڑا مقام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے اپنے مرشد صاحب کے حوالے سے. تو مرشد صاحب, بابا صاحب کے دل میں میرے لیے پسندیدگی ڈیولپ ہوگی کہ یہ اچھا انسان ہے جو اپنے مرشد کو اپنے آپ سے بلند مقام دیکھے اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ میرا کوئی ریفرنس نہیں ہے, میرا ایک ہی ریفرنس ہے, وہ ہے میرے مرشد صاحب. تو ان کے ریفرنس سے اپنے آپ کو متعارف کرا رہا ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا نام تھا, وہ اپنے زمانے میں پاکستان ریلوے کے چیئرمین تھے, ڈبلیو اے شیخ, اور یہ انگریز کے ٹرین بیوروکریٹ تھے. سکسٹیز میں ریلوے کے جو چیئرمین ہیں وہ براہ راست آنسریبل تھے ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان. ایک بار کسی آفیشیل میٹنگ کے لیے اسلام آباد ڈبلیو اے شیخ گئے. میٹنگ ختم ہو گئی تو ان کے ہی بھائی, ان کے نام کے انیشل بھی ڈبلیو اے شیخ ہی بنتے تھے. وہ ان دنوں سی ڈی اے کے چیئرمین تھے. تو یہ ریلوے والے شیخ صاحب اپنے بھائی سے ملنے سی ڈی اے کے ہیڈ آفس چلے گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے بھائی کے کمرے میں کچھ سینئر لوگ بیٹھے تھے. یہ گئے تو بھائی نے تعارف ان سے کرایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں, ڈبلیو اے شیخ. تو یہ فوراً بولے, ہولڈ آن, دیر از اے اسمال کریکشن, میں ان کا بھائی نہیں ہوں, یہ میرے بھائی ہیں. اب یہ نقطہ دیکھیے کہ یہ تعارف کا نقطہ ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو انہوں نے یہ فوراً کریکشن کر دی کہ نہیں, میں اس کا بھائی نہیں ہوں, یہ میرا بھائی ہے. تو مرشد کے ریفرنس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا اپنا کوئی ریفرنس نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا اگر کوئی ریفرنس ہے تو میرے مرشد ہیں, تو ان کے حوالے سے میں گیا ہوں. تو اس کے اندر جب مزار پہ جو ہم جا کے ریفرنس دیتے ہیں, اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگلا سوال یہ کہ کیا یہ درست ہے کہ چند اہل تصرف اولیاء اللہ لوہے محفوظ پر تحریر کردہ کسی شخص کی تقدیر نہ صرف پڑھ کر بتا سکتے ہیں بلکہ اس شخص نے ماضی میں کیا خواب دیکھا اور مستقبل میں کیا خواب دیکھے گا, اولیاء اللہ وہ جزیات کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. یہ کسی شخص کی انڈیویجول تقدیر کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو کوئی ولی اللہ بتا پائیں گے, اور ولی اللہ بھی وہ جو لوح محفوظ سے لوگوں کی تقدیر پڑھ سکیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ یہ درست ہے कि बहुत से औलिया अल्लाह इस मकाम को गए कि रब ताला ने उनको ये एजाज बख्श दिया कि वो लोहे तक लोहे महफूज को पढ़ सके। ये हुआ है, होते हैं ऐसे औलिया अल्लाह। ये जो ख्वाब है कि कोई शख्स किसी वली अल्लाह के पास जाए और कहे कि साहब रात मैंने ये ख्वाब देखा, और वो आधा बयान करे आधा भूल गया हो, तो वली अल्लाह खुद ही कंप्लीट कर दिया करते हैं कि वो भाई तुमने ख्वाब में ये भी देखा था जो तुमने बताया नहीं मुझे, या कह देंगे कि जामिया चंद दिन में अगले चंद दिन में ये ख्वाब देखोगे उसमें ये तुम्हें पता चल जाएगा जाओ। वो एक वो इल्म ही का एक हिस्सा है, एक शाख है उसकी, कि जब इल्म मिलता है तो ये चीज भी साथ ही मिल जाती है। इनसे अगला सवाल है कि समझ नहीं आती कि एक वली अल्लाह किसी सोए हुए शख्स के ख्वाबों पर कैसे तसर्रुफ कर लेता है, हत्ता कि वो शख्स वही ख्वाब देखता है जो वली अल्लाह चाहता है, और यूं तरबियत और इल्म का सिलसिला ख्वाब में जारी रहता है। गोया वली अल्लाह दिन के साथ साथ अपनी रात भी अल्लाह की खुशनूदी और अल्लाह के बंदों को फैज देने में गुजारता है, तो शागिर्दों को इतनी मौज कराना कि वली अल्लाह की अपनी च्वाइस है या ड्यूटी। अब इसने छोटी सी एक करेक्शन कर लीजिए आप कि किसी वली अल्लाह के पास ये तसर्रुफ नहीं है कि किसी को वो वही ख्वाब दिखाए जो वो चाहे, ये तसर्रुफ नहीं है और नहीं ये होता है। यहां तक तो वो कह देगा कि चलो अगले चंद दिन में, और ये वक्त भी नहीं बता पाएगा कि कल रात को ये ख्वाब आएगा आपको, ये कह देगा अगले चंद दिन में आप एक ख्वाब देखेंगे उसमें ये आप देखेंगे तो ये इत्तला होगी वो मिल जाएगी जाओ। ये तो ठीक है, यहां तक बिल्कुल दुरुस्त है बात, लेकिन ये तसर्रुफ नहीं होता कि जो चाहे वो ख्वाब दिखा दे, ये रब के हाथ में है। होता ये है कि औलिया इकराम के पास हर तरह के लोग जाते हैं, और जाते नेक नियति से इल्म हासिल करने ही है, लेकिन कुछ मखसूस हालात से, क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी डेवलप जो होती है वो उन हालात के तहत होती है जिससे उसका पैदाइश के बाद से अब तक का वक्त गुजरा होता है, ये उसकी साइकोलॉजी बना देगी। अब घर में अगर मैंने हर वक्त ये सुना कि ये जिन बड़ा पावरफुल होता है, जिन आ जाए तो ये कर लेता है वो कर लेता है, जिन से डरो, तो मैं बचपन से ही अगर सुनता रहा हूं बड़ी उम्र में आके भी मेरे जहन पर कहीं सबकॉन्शियस में जिन बहुत बड़ी भला बना रहेगा, और जहां किसी चीज की मैं तौजीह न पेश कर सका, अपने आप को न बता पाया, तो मेरा जहन उधर को जाएगा ये जिन था। लेकिन अगर बचपन में ये तो मैंने सुना कि जिन होता है और ऐसा होता है उसमें बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन साथ मुझे ये सिखाया गया कि जिन अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, अपनी तमाम तर तसर्रुफात के बावजूद इतना छोटा है कि उसने तुम्हें सजदा किया था रब के हुक्म पर। उसको हुक्म दिया गया था कि ये मेरा खलीफा है इसको सजदा करो, تو سجدہ تو اس کو کیا جاتا ہے جو بہت بڑا ہو خود سے. تو تم بحیثیت رب تعالیٰ کے خلیفہ کے جن سے کہیں بڑے ہو, تو جن کی کیا مجال ہے کہ تمہیں کچھ کہہ سکے؟ تو جن کے بارے میں تصور میرا قائم ہوگا کہ جن کا وجود ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے میں وہ ہوں جس کو حکم دیا گیا تھا جن کو, کہ اس کو سجدہ کرو جس کے لیے حکم تھا. تو جن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر کسی مقام پر جن میرے سامنے ظاہر ہو کر آ جائے گا تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا, بلکہ شاید اس سے ہنس کے میں بات کروں. اس سے گفتگو کرتے ہوئے میری ٹون پیٹرنائزنگ ہوگی, مربیانہ گفتگو ہوگی. تو یہ سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ تقدیر کے بارے میں بھی, ہم کیوں تڑپتے پھرتے ہیں؟ میں جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہوں. کبھی آپ دیکھیے جون کی دھوپ میں میں چلا جا رہا ہوں گا, پوچھے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ یار یہاں سے 45 میل دور ایک گاؤں میں ایک آدمی ہے جو لوہے محفوظ پڑھ کے مجھے میری تقدیر بتا دے گا. پیدل چلا جا رہا ہوں پاگلوں کی طرح جون کی تپتی ہوئی دوپہر میں, اس لیے کہ بچپن سے سیکھا میں نے یہ کہ اولیاء کرام ہیں جو تقدیر پڑھ کے بتا بھی دیتے ہیں اور تقدیر بدل بھی دیتے ہیں. تو اگر کسی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ یس ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں جو تقدیر پڑھ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کریں تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے تقدیر بدل بھی دیتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی نے اگر مجھے یہ سکھا دیا کہ رب تعالیٰ تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی ولی اللہ کا, اور رب تعالیٰ تمہاری بھی بات اتنی ہی سنتا ہے جتنی کسی اور کی, اور تقدیر کے بارے میں اگر یہ کسی نے مجھے سکھا دیا کہ ماں سوائے چند ایک چیزوں کے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں, جس کو تقدیر معین بھی کہہ لیجئے آسان لفظوں میں اپنی معلومات کے لیے, جیسے ایک چیز ہے جس میں میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا, یہ تقدیر ہے میری اور یہ تقدیر مبرم ہے جس کو ہم تقدیر معین کہہ سکتے ہیں اردو میں. اب اس میں میرا کوئی اختیار نہیں, میں تبدیل نہیں کر سکتا کہ میں کس گھر میں پیدا ہوں گا. میں اپنی موت کے وقت کو, اپنی موت کے طریقے کو, اپنی موت کے مقام کو تبدیل نہیں کر سکتا, یہ میری تقدیر ہے. عزت اور ذلت کے معاملے کو میں تبدیل نہیں کر سکتا. چند ایک چیزیں ہیں جو تقدیر مبرم میں آتی ہیں وہ میں تبدیل نہیں کر سکتا, وہاں اختیار نہیں میرا, لیکن وہ چیزیں دے ہارڈلی فارم 5% ٹوٹل, باقی 95% جو ہیں اس کا اختیار مجھے رب نے خود دیا ہے کہ میں محنت کے ذریعے اپنی تقدیر خود لکھ لوں. آپ دو چیزوں کو اگر ملا کر ہمیشہ پڑھیں اور اس کو دونوں چیزوں کو ملا کر یاد رکھیں تو ان سارے پرابلم سے نکل جاتا ہے انسان تقدیر والے, کہ جب رب نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کوئی شخص کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر رب نہ چاہے, اور کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر رب فائدہ نہ پہنچانا چاہے, قرآن میں اس نے فیصلہ کر دیا. मैं इसको फैसला इसलिए कहता हूं कि जो कुछ रब ने फरमाया वो उसका फैसला है, वो होके रहेगा। इसको इसके साथ मिला के पढ़िए कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो खेल सारा समझ में आ जाएगा कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, लेकिन फाइनल इख्तियार रब के हाथ में है कि वो फायदा देना चाहे। फिर और इसकी जुजियात आगे छोटी छोटी हैं कि रब ताला हमारे लिए मां से कहीं ज्यादा मेहरबान है। जैसे मां नहीं चाहेगी कि कोई नुकसान दे चीज हम हाथ में पकड़ लें, तो रब भी हमें कोई नुकसान दे चीज, बेशक हम भले कोई ख्वाहिश ही क्यों ना करें, वो हमें मिलने नहीं देगा ताकि हमें नुकसान ना होने पाए। दूसरी बात कि रब ताला का हर फैसला हमारी बेहतरी के लिए होता है, उसके हर काम में एक मसलहत होती है। अब इसको उसके साथ मिला के देख लीजिए आप। तो ये तकदीर जानने के चक्कर में इससे बाहर निकलिए हम। जब हम इससे बाहर निकल आएंगे तो खुदा की बंदगी की तरफ जाना बड़ा आसान हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि हमें इल्म मिले, अल्लाह इल्म अता करे, हमें रब अपना कुर्ब अता फरमाए, रब ताला की दोस्ती हासिल हो जाए, हम जाके मुख्तलिफ साहिबे इल्म लोगों के पास बैठते हैं, अपना वक्त वहां लगाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, उनकी डांट सुनते हैं, बाज़कात मार भी बर्दाश्त कर जाते हैं उनकी, इसलिए कि हमें रब की दोस्ती मिल जाए। जरा ये तो सोचिए एक मिनट को बैठ के कि आप किसी को दोस्त बनाते हैं, आप तो बना लेंगे उसे दोस्त, लेकिन वो आपको अपना दोस्त बनाएगा अगर उसको ये पता चले कि आपको उस पर भरोसा ही नहीं, आपको उस पर एतमाद ही नहीं है, तो क्या वो आपको अपना दोस्त बनाएगा कभी? तो जब हम इस जुस्तजू में रहते हैं कि मुझे ये बड़ी आदत है कि अभी आप मुझे बता दीजिए कि फला जगह कोई सड़क वगैरह है नहीं, पैदल जाना पड़ता है 60 मील दूर, दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा है, उससे दुआ कराइए, उसकी दुआ फौरन कबूल होती है, मैं सारे काम छोड़ के चल पड़ूंगा। एक लम्हे को भी मुझे ये सोच नहीं आएगी कि क्यों, क्या मुझे अपने रब पर भरोसा नहीं कि वो मेरी सुनेगा? और जब रब दिलों के हाल जानता है तो क्या ये नहीं जानता कि मैं दुआ के लिए चला जा रहा हूं उसके पास, तो क्या रब ये नहीं कहेगा कि जाओ तुम उसके पास, मेरे पास अब मत आना, मैंने कौन सी तुम्हारी बात टाली है जो तुम उसके पास जा रहे हो? तो रब का इल्म हासिल करने के लिए, या यूं कहिए ज्यादा बेहतर अल्फाज कि रब की दोस्ती हासिल करने के लिए पहले हम आंखें बंद करके उस पर भरोसा तो करना सीखें। और भरोसे का तकाजा यह है कि मुझे ये पुख्ता यकीन हो मेरे दिल में कि वो मेरा रब है और मैं जो उससे मांगूंगा, जो उससे कहूंगा, वो सुनेगा उसको और उसको पूरा भी करेगा। दोस्ती की तो बुनियाद ही म्यूचुअल ट्रस्ट है, भरोसा है। तो दोस्ती हासिल करने के लिए हम तगोदो कर रहे हैं, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा और एतमाद नहीं करते, घर के जुबान से जितना मर्जी कहते रहे कि हम भागे जा रहे हैं दुआ के लिए। मैंने यहां 2-3 मर्तबा इस चीज का जिक्र किया कि मैंने अपने मुर्शिद साहब से दुनियावी दुआ का कह दिया। जब दूसरी बार कहा तो उनके पास जो अली अकराम आते थे उनमें से एक साहब ने मेरे ऊपर एहसान किया, अब तो मैं कह सकता हूं कि एहसान था मेरे ऊपर, कि उन्होंने मना किया कि मुर्शिद साहब से दुनियावी दुआ का ना कहा करें। एक और वली अल्लाह थे, उन्होंने मुझे दुनियावी दुआ करने के से मना कर दिया। उसकी जो वजह बताई शायद मैं आपको ना बताऊं, लेकिन आज वो बात समझ में आती है कि उसके पीछे क्या क्या हिकमतें थी कि उन वली अल्लाह ने मुझे ये मना किया कि अपने मुर्शिद साहब से दुनियावी दुआ का मत कहिए, कुछ मत मांगिए इनसे। मैंने ये बात तो आपसे अर्ज की थी कि मुर्शिद साहब के दुनिया से पर्दा फरमाने से कुछ 2 महीने पहले से मुझे कुछ मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में एक बात कही कि आपके मुर्शिद बहुत अच्छे आदमी हैं, ये अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहे, खाली हाथ जा रहे हैं, सब कुछ आपको सौंप दिया है इन्होंने। तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन ये नुक्ता बहुत बाद में समझ में आया कि मैं जुस्तजू में हूं रब ताला के कुर्बत के, रब ताला की दोस्ती। तो पहले मैं म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस का रिश्ता तो कायम करूं रब के साथ, और उस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के रिश्ते के लिए जरूरी है कि मैं ये समझ लूं कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। ये कुरान की आयत है, बेशक एक मखसूस मजहब के पैरोकार उसको अपनी अंगूठी पे इस आयत को लिखते हैं, लेकिन कुरान तो सबका है। कोई लिखना चाहता है यहूदी, लिख के पहनना चाहता है पहन ले। आपको मैं ये तो नहीं कहता, हजारों सैकड़ों के हिसाब से लोग मिल जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक में जो रोमन अरबिक में लिखी हुई मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते हैं सुबह भी रात को भी। बल्कि उस पर एक साहब ने मुझे कहा कि शाह साहब ये पढ़ते हैं तलफ़ुज़ गलत होता है इनका, इसलिए कि अमेरिकन अगर पढ़ेगा उसे तो अरबी को भी अंग्रेजी में ही पढ़ेगा, उसका लब लहजा अंग्रेजी होगा। तो मैंने उससे ये कहा कि देखो इसका जज्बा देखो क्या है। तो ये अंग्रेजी लब लहजे में अरबी पढ़ते हुए मुझे किस कदर प्यारा लग रहा है, तो रब को ये कितना प्यारा लगता होगा। तो शायद इसी के सदके पढ़ता पढ़ता मुसलमान हो जाए। तो मैंने उन्हें हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दी कि वो थोड़े, उनकी जुबान ज्यादा साफ नहीं थी, आउट ऑफ रेस्पेक्ट यही कहना चाहिए, लेकिन आपका तलफ़ुज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपना पसंद था, तो अल्फाज तो उनके नहीं दुरुस्त अदा हो रहे थे। तो वो जो एक रिश्ता कायम होता है रब के साथ वो तो पहले कायम किया जाए, और उसका तकाजा यह है कि मैं किसी गैर अल्लाह के पास ना जाऊं। फिर अपनी हाजात के लिए, बहुत सिंपल बात है। तो तकदीर अगर समझ में आ गई मेरे, मास्वाय तकदीर मुबरम के, बाकी सब मेरे हाथ में दी है मेरे रब ताला ने, इसलिए कि मैं रब का खलीफा हूं इस जमीन पर, तो वो मुझे बेइख्तियार नहीं उसने भेजा, तो वो मेरे इख्तियार में है। तो मैं कोशिश करूंगा और रब से दुआ करूंगा कि या अल्लाह मैंने मकदूर भर कोशिश कर ली, इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे इसमें कामयाबी दे दे, मैंने इस जॉब के में इंटरव्यू दिया है, ये जॉब दे दे, इसलिए कि मैं अपने ऑप्शंस को महदूद क्यों कर लूं ये कह के, क्या मालूम कि वो जॉब मेरे हक में बेहतर है कि नहीं है, तो ये क्यों ना कह दूं कि मैंने मकदूर भर कोशिश की है तो इससे मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा दे, वो अता कर देगा। अगला सवाल इनका वही जिसका भी मैंने जवाब दिया कि क्या आपने अपने मुर्शिद साहब से कभी कोई फरमाइश की, मुझे याद नहीं पड़ता, मास्वा इस बात के कि आपने ये पूछा हो कि चाय पियोगे, और मैंने कहा, मैं हमेशा कह देता था कि जी जरूर पीऊंगा, तो तुम खाना खाए कि साहब कहा मैं तो यहां खाने के लिए आया था, ये फरमाइश अगर आप इसे कह लें तो कह लें, लेकिन वैसे नहीं कुछ कहा कि आप मुझे ये इल्म दे दें, आप मुझको वो इल्म दे दें, वो कर दें वो कर दें, या मुझे ये दिखा दें मुझे वो दिखा दें। वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ हिदायत दिए ही रखी, वरना मुझसे अकलमंदी की बात कभी होती नहीं है। ये अगला है कि जब कोई मुर्शद अपने किसी मुरीद को किसी विसाल शुदा बुजुर्ग की तरफ बहुत मायल देखता है, तो ऐसे में वो मुरीद के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है? करना नहीं चाहिए, इजहार नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि ये म्यूचुअल ट्रस्ट के खिलाफ हो जाएगी बात। मैं अपने मुर्शिद साहब की जिंदगी में दाता साहब के पास हर रोज जाता था बगैर नागे के, लेकिन मैंने मुर्शिद साहब से कहा नहीं कभी कि मैं रोज जाता हूं, बल्कि वहां पर मैंने बहुत कुछ फिर देखा तो एक चीज मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैंने मुर्शिद साहब से उस दिन अर्ज किया कि साहब मैं दाता साहब गया था तो वहां ये पेश आया मुझे, तो आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दे दिया कि वो तुम्हारे हिस्से का इल्म था जो उन्होंने दाता साहब ने तुम्हें दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने कभी जिक्र इस तरह किया नहीं और करना चाहिए भी नहीं, खामोशी से माइल हैं जाते रहिए लेकिन जिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आपसे, और बाकी सवालों के जवाब उसके बाद अर्ज करने की कोशिश कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम।